ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरहे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरे। यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 5, आइए मिलकर के पाठ करते हैं। यदि शूर बहवो लोके शास्तारो दंड धारिणः कस्य स्याताम नवा कस्य मृत्योश्चामृतमेव वा। शब्दानुवाद, यदि यदि स्युः हैं, बहवः बहुत सारे अनेक, लोके इस जगत में, शास्तारः शासक, शासक माने नियंत्रण करने वाला, दंडधारिणः पापी लोगों को, बोलो, दंड देने के लिए। इसका अर्थ होता है कि दंड के बिना कोई शासन नहीं मानेगा, समझाने से कोई नहीं मानता। कस्य किसका, स्याताम हो सकता है, ना नहीं, वा अथवा, कस्य किसका, मृत्यु हो। यहां मृत्यु का अर्थ होता है कष्ट। संस्कृत में हमेशा एक ही अर्थ नहीं होता। देखो ये एक नया अर्थ है आप लोग, आप सबके लिए। मृत्यु शब्द का क्या अर्थ लिखा हुआ है, दुख या कष्ट। आप लोग जब उपनिषद पाठ करते हो, इस उपनिषद में एक जगह में आया है, विद्या चाविद्याम च जस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युर्तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। वहां भी मृत्यु शब्द का अर्थ है कष्ट, दुख, संकट, मृत्यु। च तथा अमृतम सुख एव निश्चय ही वा अथवा। यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासक तथा न्यायकर्ता हैं जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हों, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे। और ना तो कोई दंडित होगा ना तो कोई पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन नहीं कर पाते तो हर एक को दंड तथा पुरस्कार दोनों ही देने रहेंगे, देने होंगे। तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। चूंकि यमदूत यमराज जी के आदेश को पूरा करने में असफल रहे थे, अतः उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि यमराज जी में पापी को दंड देने की शक्ति है भी या नहीं। यद्यपि वे यमराज जी के आदेशानुसार अजामिल को बंदी बनाने गए थे, परंतु उन्होंने किसी उच्चतर अधिकारी के आदेश के कारण अपने आप को असफल पाए, इसलिए वे इस बारे में अनिश्चित थे कि अधिकारी अनेक हैं या केवल एक। यदि कोई अधिकारी हो जो विभिन्न निर्णय दें जो परस्पर विरोधी हो, तो कोई व्यक्ति या तो गलत दंड या पुरस्कार पा सकता है, या फिर वह ना तो दंडित होगा ना पुरस्कृत। भौतिक जगत में हमारे अनुभव के अनुसार एक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति दूसरे न्यायालय में याचिका दे सकता है। इस तरह वही व्यक्ति विभिन्न निर्णयों के अनुसार दंडित या पुरस्कृत किया जा सकता है, किंतु प्रकृति के कानून में या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के न्यायालय में ऐसे परस्पर विरोधी निर्णय नहीं हो सकते। न्यायकर्ताओं तथा अनेक उनके निर्णयों को पूर्ण तथा विरोधों से मुक्त होना चाहिए। वस्तुतः अजामिल के मामले में यमराज की स्थिति अति विषम थी, क्योंकि अजामिल को बंदी बनाने में यमदूत सही थे, किंतु विष्णुदूतों ने उन्हें निष्फल कर दिया था। यद्यपि इन परिस्थितियों में यमराज पर विष्णुदूत तथा यमदूत दोनों ही दोषारोपण कर रहे थे, किंतु न्याय करने में वे पूर्ण हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त है। अतएव वे बताएंगे कि उनकी सही स्थिति क्या है और हर व्यक्ति किस तरह परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हरे कृष्णा। कितने लोग पहली बार वृंदावन आए हो? मैंने इसलिए पूछा, कई नए चेहरे हैं, जोर से उठाओ। हाँ, बहुत सारे। ठीक है, भगवत स्वरूप भागवत की कथा में आप सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे इस्कॉन में ये नियम है कि प्रत्येक दिन ये भागवत की चर्चा होती है। प्रभुपाद जी ने ये विशेष नियम बनाया और वाकई एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और इन श्लोकों को एक एक श्लोक को लेकर के उनके अर्थ के साथ पठन पाठन करना, ये मैं समझता हूँ कि इस्कॉन के अतिरिक्त कहीं दुर्लभ है। तो आप लोगों का बड़ा सद्भाग्य है और हमारा भी सद्भाग्य है, तो श्रीमद् भागवत की कक्षा में बैठकर इन श्लोकों पर चर्चा करना। सो नए हैं पुराने हैं तो सबके लिए सुखद रहे, इसलिए 2-5 मिनट में हम थोड़ी भूमिका कह देना चाहेंगे। भागवत में ये जो प्रसंग चल रहा है, आप देखेंगे इसमें यमदूता ऊँचू लिखा हुआ है। यमदूता ऊँचू माने यमदूत जब परास्त होते हैं, अजामिल को लेने गए थे, विष्णु दूतों ने इन्हें हरा दिया, बड़े अपमानित होकर चिंता के भार से ग्रसित होकर यमदूत, 3 यमदूत अपने घर वापस लौट रहे हैं और मन में बड़ी चिंता है। विचार करते हुए जा रहे हैं और क्या कहेंगे यमराज जी से, ये भी जाकर के कह भी दिया है। आगे के 7 श्लोकों में यमदूता ऊँचू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 7 श्लोकों में यमदूतों ने क्या कहा, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ वर्णन किया है, वेदव्यास जी ने यहाँ लिखा है। आप सब जानते हो ये भागवत ग्रंथ है कि संवाद परक ग्रंथ है, एक दूसरे से के वार्तालाप है। ऐसा नहीं कि कोई नियम बना दिया बस उसी को कुछ लोग सुनते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं और कुछ लोग उसका उत्तर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि विष्णु दूतों के साथ यमदूतों का वार्तालाप हुआ, ये संवाद हुआ। कहाँ हुआ ये संवाद? संवाद माने एक दूसरे से जो बातें करते हैं उसको कहते हैं संवाद। आप जब रेडियो टीवी में सुनते हो, नहीं सुनते वो संवाद, वाकई वो संवाद नहीं है, वो सब फालतू का बात है, विवाद है, लेकिन ये संवाद है। सम्यक वादनम, अच्छी बातें हैं, जिन बातों का श्रवण करने से मन प्रसन्न होता है, हृदय शुद्ध होता है, जीवन में ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, इसको कहते हैं संवाद। सो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पिछले जो अध्यायों में आपने सुना है कि यमदूत और विष्णु दूतों में जो संवाद हुआ वो कहाँ हुआ? हाथ उठाइए, कहाँ हुआ? अजामिल का घर कहाँ था? हाँ, हाँ, कन्नौज में। तो एक तो संवाद यही हुआ हमारी ये नजदीक कानपुर में, तो एक तो ये कानपुरिया संवाद है, इसी लोक में है। देखो अच्छे लोगों की बातें सुननी चाहिए, संवाद, बड़े बड़े लोगों के साथ जो मेल मिलाप करते हैं, जो बातें सुनते हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। पहली बात तो यही है, यहां से सीखने लायक है, कभी भी निम्न कोटि के लोगों से वार्तालाप ना करो। मान लीजिए कि राजा किसी सेना से मित्रता करता है, उसको क्या मिलेगा? विपत्ति में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सेना अगर राजा से मित्रता करती है तो राजा से बहुत दौलत संपत्ति की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए आपसे, अपने से कोई बुद्धिमान है उनसे मिलोगे, अपने से कोई धार्मिक है, अपने से कोई नीतिवान है, अपने से कोई ज्ञानवान है, उनसे हम संवाद करेंगे, मिलेंगे, तो हमारा लाभ होगा। तो भागवत में इन्हीं संवादों का चित्रण किया गया है, ताकि हमको एक मौका मिले बड़े बड़े लोगों की बातें सुने। और आप अपना अनुभव देख सकते हो, जिनकी संगति नीच लोगों से है तो उनकी गति भी नीच है, isn't it? नीच लोगों से मिलोगे, शराबी से, जुआड़ी से मिलोगे, तो आपको क्या सीखने को मिलेगा? कैसे शराब पिया जाता है, कैसे जुआ खेला जाता है। लेकिन किस नीतिवान व्यक्ति से मिलोगे, महात्मा गांधी से मिलकर के लाखों करोड़ लोग अहिंसक बन गए, है ना? सो संवाद है, हमेशा हम लोगों के जीवन में ये एक नीति बना लेनी चाहिए, कुछ बड़े बड़े लोगों से रोज प्रतिरोज मिले। नहीं मिलने का मौका है तो भागवत में संवाद है, बड़े बड़े संवादों का पठन पाठन करें, ये भी संगति है। जैसा संग वैसा रंग, इसलिए संवाद। तो यमदूत और विष्णु दूतों का संवाद है, ये बहुत ज्यादा उपादेय है, इसमें बहुत सीखने को मिलेगा। ये संवाद यहाँ का नहीं है, वो बहुत दूसरे दूसरे लोग के लोग आए थे। अरे भाई, अमेरिका के, रसिया के लोग आ जाते हैं, आपस में फिस फास बातें करते हैं, हमारे लोग, भारतीय लोग कान देकर सुनते हैं कैसी बातें करते हैं। और वो तो यमपुरी के है और एक विष्णुपुरी के है, एक बैकुंठ के और एक यमलोक के, उनकी बातें कैसी है आपने सुना है। और आज की जो बातें हैं आप सुनने जा रहे हो, ये बातें कहां कहां से हैं, ये संवाद कहां किसके बीच में है? ये यमदूत और यमराज। भाई देखना पड़ेगा कि सिपाही और सिपाही के जो मालिक, इस बहुत देहाती भाषा में कांस्टेबल और डीजी, इनमें क्या वार्तालाप हो रहा है ना? हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्य पुलिस विभाग के हो गए अधिकारी, रक्षा विभाग,
अथवा रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री और कनेस्टेबल, उन दोनों में वार्तालाप क्या हो रहा है और कहां हो रहा है? ये वार्तालाप हो रहा है कहां पर? यमपुरी की धरे संयमणिपुरी, अलग अलग लोक है, कुबेरपुरी क्या है, अलकापुरी, इंद्रपुरी, अमरावती, वरुणपुरी, देवधानी, और यमराज जी के लोग संयमणिपुरी। ये सब हमारे बड़े बड़े मंत्री रहते हैं इस विश्व के, जो शासक हैं हम भले ही देख ना सके। अरे भाई, हिमाचल में रहने वाला, वो पहाड़ों की खाई में रहने वाला कोई देहात व्यक्ति यहां हमारे प्रधानमंत्री 7 रेस कोर्स में रह रहे हैं, उनको क्या पता है? पता नहीं चलता। तो कभी कभी हम अपने अल्प ज्ञान से ये नहीं समझ पाते हैं कि ये बातें, ये लोग कहां कहां है। पर आकाश में रात्रि के अंधकार में देखो कितने टिमटिमाते सितारे हैं। ये सब लोक लोकांतर है, ग्रह ग्रहांतर है, वहां के लोगों में बातें हो रही है। तो स्वाभाविक है कि इंटरेस्टिंग है कि नए लोग है, नई चाल है, नया आइडिया है। तो यमदूत जाकर के अपने यमराज से क्या बातें करते हैं, यमदूता ऊंचो, कल आपने सुना था ये अजामिल का उपाख्यान है। एक बड़ा पापी था, उसका क्या परिणाम हुआ भाई, क्या कर्म उसने किया? तो कल से ये संवाद शुरू हुआ, यमदूता ऊंचो, यमदूतों ने कहा। कल जो प्रवाचक यहां थे उन्होंने कहा होगा, कति संति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। यमदूतों को भी पूरा पूरा प्रशिक्षण है, कौन सा व्यक्ति कैसा कर्म करता है। और हम यहां जितने बैठे हुए हैं, हम 3 प्रकार के कर्म कर सकते हैं, 3 प्रकार के कर्म, ज्यादा नहीं कर सकते। क्या कर्म हो सकते हैं 3 प्रकार में से? पहला कर्म क्या होगा? अच्छा कर्म। दूसरा कर्म क्या होगा? तुम वो मत बोलो, आप लोग बोलो क्या होगा। हाँ जी, जोर से बोलो। बुरा कर्म होगा, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। और एक क्या होगा? मिक्स होगा, थोड़ा मिला जुला होगा, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तु संन्यासिनाम क्वचित। भगवान ने गीता में कहा है 3 प्रकार के कर्मों के फल है, अच्छे कर्म के अच्छे फल, बुरे कर्मों के बुरे फल और मिश्र कर्म के मिश्र फल। पर फल किसको मिलेगा, ये फल का अकाउंट कोई बड़ा आदमी रखता है। हमारे पास फल देने की क्षमता नहीं है। कितने इंटरेस्टिंग बात है, हम कर्म तो कर सकते हैं, कर्म करने के लिए स्वातंत्र हमारे में है, परंतु फल हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप कोई सामान्य फल भी उगा नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, इवन एक गेहूं का दाना भी। आप परिश्रम खूब कर सकते हो पर आप फल उगा नहीं सकते, है ना? ये व्यक्ति कितना परतंत्र है, यही तो सत्संग में ज्ञान होता है। आप कहोगे कि हम पुरुष स्त्री मिलकर के बच्चा पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, वो ईश्वर के हाथ में है। ऑस्ट्रेलिया में कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, वो जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है। पर आजादी के समय 35 करोड़ की आबादी भारत की, आज 125 करोड़ हो गई बिना प्रयास। ये कितनी भगवान की बड़ी कृपा है। गेहूं, एक दाना गेहूं आप घर में रखोगे वो एक को एक रहेगा, लेकिन जैसे मिट्टी में आप डाल दोगे वो उसमें से 100 हो जाएगा। कितना बड़ा मिरेकल ये है। सो इंसान केवल परिश्रम करने में ही स्वतंत्र है।
पर फल वो तो दैव प्रेरित है, ईश्वर देता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना ज्ञानवान होता है उसका अहंकार उतना पतला होता है। ये व्यक्तियों में गलत फहमी है कि ज्ञानवान व्यक्ति अहंकार होगा, नहीं, वो खोखला ज्ञानी व्यक्ति अहंकारी होगा, क्योंकि वो समझता है कि हमारी हैसियत कितनी है। जब आप शुरू शुरू में आए होंगे, एक आधे श्लोक बोलते होंगे, आपको लगेगा वाह हम कितने बड़े पंडित हैं। जब 10-20 साल रह जाओगे, मौसम कोन कुटिल खल कान, हे प्रभु मुझ जैसा पापी संसार में कोई नहीं मिलेगा। अरे यही अनुभव होता है सबको। तो यहां भगवान कहते हैं तीन प्रकार के कर्म हम करने को बाध्य है, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, मिश्र करेंगे, और उनका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। लेकिन एक को भोगना नहीं पड़ेगा। किसको भोगना नहीं पड़ेगा? किसको? मैंने श्लोक पाठ किया, किसको भोगना नहीं पड़ेगा? न तो सन्यासी नाम क्वचित, सन्यासियों को भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि सन्यास जल्दी जल्दी ले ले, न रहेगा बांस। जब तक तुम सन्यास नहीं लोगे तब तक कर्म का ये चक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जब तक कर्म करते रहोगे तब तक मैं तुमसे बहुत दूर रहूंगा, नहीं हो पाएगा, भगवान का साक्षात्कार संभव नहीं, क्योंकि फल भोगते रहोगे। आज ये अच्छा फल माने क्या? तुम अच्छी योनि में जाओगे, बुरी योनि में जाओगे, मिश्र योनि में जाओगे, कभी राक्षस बन जाओगे, कभी देवता बन जाओगे, कभी मिश्र योनि वाले मनुष्य बन जाओगे, करते रहोगे। प्रतीर्ण यावत मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत, भगवान ऋषभदेव अध्याय 5 भागवत स्कंद 5। प्रतीर्ण यावत, तो सन्यास का अर्थ यह नहीं है कि आप लाल कपड़े पहन ले, दंड धारण कर ले, ना 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 ना। सन्यास, अर्जुन एक महान सन्यासी थे, अफलाकांक्षी वीर जग्यई, हमको फल की आशा किए बगैर कृष्ण गुरु की प्रसन्नता के लिए जो कार्य हम करेंगे उसका फल हमारा पीछा नहीं करेगा। यमदूतों ने इस नस को पकड़ लिया, बोले अजामिल कौन सा गुरु धारण किया था? बिल्कुल गुरु नहीं था, अजामिल बिल्कुल भक्त नहीं था। इसलिए यमदूतों ने यहां का त्रैविधम कुर्वतः कर्म, तीन प्रकार के कर्म तो करते हैं, और अजामिल बिल्कुल नालायक सारे गर्हित कर्म कर डाले हैं, सारे गर्हित कर्म। वाकई ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे ना, तभी जाकर के कहते हैं कति संति ही शास्तारो, मेरे मालिक मेरे प्रभु इस लोग में कितने शासक हैं, दंड देने वाले कितने हैं, रक्षा मंत्री कितने हैं, भाई बताओ, खूब गुस्से में है। अच्छा चलते चलते एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, ये अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भागवत के 6 स्कंद के 3 अध्याय है। आप जानते हो जैसे भगवान है ऐसा ही भागवत है, भगवान का अवतरण जैसे किसी विशेष प्रयोजन के लिए होता है, भागवत के अध्यायों का अवतरण भी किसी विशेष प्रयोजन के लिए होता है। तो 3 अध्याय का अवतरण किस लिए हुआ होगा? किस लिए हुआ होगा? आप नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए होगा क्योंकि पिछले संवाद हुआ है कि यमदूत और विष्णु दूतों में विष्णु दूतों ने अपना पक्ष रखा और यमदूतों ने अपना पक्ष रखा। क्या तुम सोचते हो यमदूत इतने जल्दी मान जाएंगे? ये मानने वाले नहीं थे, ये तो भाई उनका बल ज्यादा हैवी हुआ, उनको मारे पीटे भगाए तब ये भाग के आए, अन्यथा ये अजामिल को छोड़ने वाले नहीं थे। बिल्कुल प्रशिक्षित यह हैं, इनके हाथ में बहुत अस्त्र शस्त्र हैं, और सबसे ज्यादा जो 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 बड़ा फंदा होता है कालपास,
इनके हाथ में रहता है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं काट सकता, तलवार उसको काट नहीं सकती। वो तो बैकुंठ की तलवार, उसकी धार भार से वो अलग है, उसने काट डाला, तुम्हारी तलवार उसको काट नहीं पाएगी। अब समस्या ये खड़ी होती है कि भाई वहां जो सिद्धांत विष्णु दूतों ने दिया है, जब तक यमराज उसकी पुष्टि नहीं करेंगे, यमदूत मानेंगे कैसे? हम आपको कितना भी सिखा ले, लेकिन तुम्हारा मन तब तक नहीं मानेगा जब तुम्हारा गुरु मेरी बात को समर्थन नहीं करेगा। Am I right? तुम हमारी बात को नहीं मानोगे, वो कहोगे हाँ प्रभु जी बढ़िया प्रवचन करते हैं, लेकिन हमारे गुरु कहे तब ना, नहीं मानोगे। इसलिए इस अध्याय का अवतरण हो गया कि भाई यमराज जी जब इनकी बातें सुनेंगे, सबसे पहले अपनी गलती महसूस करेंगे। धिक्कार है मुझे, मैंने सिपाहियों को तो अपॉइंटमेंट दे दिया लेकिन इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, गलती हमारी। तो प्रमुख बात यह है कि गलती सबसे होती है, पर खूब कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को मान लेते हैं। वही व्यक्ति जो गलती को मान लेता है वो यमराज जी की तरह महाजन बन जाता है। बड़े लोगों की बात सुनोगे तो गलती महसूस होगी, गलती मानने के लिए हमारे में हिम्मत भी आएगी। तो सबसे पहली बात है कि इस अध्याय में आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि यमराज जी अपनी गलती को महसूस करेंगे। यदि मेरे अधीन कोई भक्त हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको हम ठीक ठीक से प्रशिक्षित करें। मान लीजिए उनको प्रचार के लिए हमको भेजना है, उनको सबसे पहले हम सिखाएं कैसे कीर्तन करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे श्लोक की आवृत्ति करनी है, कैसे करताल बजाना है, ये जरूरी है। यमराज जी को महसूस होगा यस आई हैव कमिटेड मिस्टेक। तो सबसे पहली बात यह है कि इस अध्याय का अवतरण हो रहा है कि यमराज जी अपनी गलती को महसूस करें और क्षमा की याचना करें, नंबर वन। दूसरी बात है, यमराज जी महाजन हैं, महाजन होने के नाते सिद्धांत पेश करना उनका कार्य है। यज्ञत आचरति श्रेष्ठस, संकट में डालना, शंकाओं में जनसमूह को रखना, ये किसी महाजन का कार्य नहीं है। इसलिए महाजन का जीवन एक एक सादा कागज जैसा होता है, मेरा जीवन कोरा कागज, बिल्कुल सादा होना चाहिए। घर के दरवाजे खिड़की बंद नहीं होनी चाहिए, इसका अर्थ है कि अपने जीवन में कोई भी गोपनीय बातें नहीं होनी चाहिए। साधु जो सीधा चले, जो सिद्धांत को ठीक ठीक से दिए। तो दूसरी बात है कि सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करना। तीसरी बात क्या है कि पूरे संसार में वैष्णवों के उत्कर्ष को प्रतिष्ठित करना। मेरे दूतों, जहां तुम गए थे वहां गलत जगह पे चले गए थे, वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं थी। क्यों? क्यों? नारायण इति अभिहितो मा भई, जैसे उन्होंने नारायण कहा तो तुरंत चार दूत आए, बड़े अद्भुत रूप धारण करने वाले। उन्होंने कहा डरो मत, बस इतना ही तो काम है। तो भक्तों का उत्कर्ष सिद्ध करने के लिए, और यमराज भक्तों का उत्कर्ष कहते हैं, फिर कौन नहीं मानेगा? यमराज है, महाजन है, और रक्षा विभाग के चरम शासक वो हैं, सर्वोच्च पद पर है सिद्धांत। और चौथी बात यह है कि यमराज जी को कोसा जा रहा है, विष्णु दूतों ने भी खूब गाली दी। विष्णु दूतों ने गाली नहीं दी, दी ना? क्या गाली दी? देखो, बड़े लोगों की गाली भी बड़े स्वभाव की होती है, छोटे लोगों की गाली तू तू मैं होती है। बड़े लोगों की गाली, मान लीजिए आप एक अच्छे भक्त हो, हमारे कई अच्छे भक्त बैठे हैं, उनको केवल मंगला आरती मान लीजिए एक दिन नहीं आए, इतना ही कह दीजिए प्रभु कल प्रातः काल 4:30 बजे मैं आपका दर्शन करना चाहता था, इतना कह दीजिए। और वो बुद्धिमान व्यक्ति, उनको बहुत एकदम चुभ जाएगी बात, उनको ये कहने की जरूरत है नहीं, अरे तू कल मंगल आरती नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, ना 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 ना, इतना ही कहना अच्छा है कि प्रभु कल प्रातः काल आपका मैं दर्शन करना चाहता था, खूब प्रयास किया पर दर्शन नहीं हो पाए। संभावितस्य अच्छा ईमानदार भी है, भक्त भी है, लज्जाशील भी है, ये बात उनको कांटे की तरह चुभ जाएगी। लेकिन जो मेंढक है, ढामन है, उसको कितना भी कहो कुछ नहीं होगा, होगा कुछ कुछ नहीं होगा। तो यमदूत विष्णु दूतों ने यमराज जी को खूब खरी खोटी सुनाई। क्या खरी खोटी सुनाई? उन्होंने इतना कहा, अरे भाई शासक हो जो आश्रित गोद में सोया हुआ है और उन्हीं को ही मार दे, वो कैसा शासक है? अपने पीछे सुना होगा विष्णु दूतों ने ऐसा कहा कि नहीं कहा? क्या यमराज जी के लिए इतनी गाली सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त है? अच्छे खानदान के लड़के हैं, सूर्य जो भगवान श्री कृष्ण के शिष्य है वो उनका बेटा है यमराज, खानदान कोई ऐसा नीचा नहीं है, बहुत ऊंचे खानदान के है वो, पत्नी बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, पत्नी भी इतनी धार्मिक है। एक बार यमराज जी के दरबार में एक लड़का गया था, नाम है उनका नचिकेता, ब्राह्मण कुमार है ना। तो नचिकेता 3 दिन तक जब खड़े रहे, यमराज जी कहीं गए थे, उनकी पत्नी ने यमराज जी को शिक्षा दी, कैसे हो एक ब्राह्मण कुमार आकर के 3 दिन हो गए खड़े हुए हैं, आप सीधे जाओ उनसे माफी मांगो और उनको संतुष्ट करने के लिए जो सेवा वो चाहेंगे उनकी सेवा करो। सोचो यमराज जी की पत्नी कितनी धार्मिक है, क्यों नहीं होगी? ये धर्मराज है, उनकी पत्नी वैसी होगी। उनकी पत्नी का नाम धूमूर्णा है, कई लोग कहते हेममाला, महाभारत में विष्णु पुराण में इनका नाम वर्णन आया है, कई लोग उर्मिला भी कहते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है हेममाला, धूमूर्णा। उनके बेटा बेटी भी है, लेकिन बड़े ऊंचे हाई फैमिली है। पत्नी ने कहा और वाकई यमराज जी गए, हे ब्राह्मण देव 3 दिन हो गए आप यहां आए हो, किसी काम वश में चला गया था, मुझे क्षमा करिए और मैं आपको प्रसन्न करने के लिए 3 वर देना चाहता हूं, आप मनमाना वर हमसे मांग। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उस खानदान के व्यक्ति को विष्णु दूतों ने कहा, ये कोई आश्रय देने वाला कोई है क्या? नहीं। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं विष्णु दूत ही यमदूत ही दोनों ने उनको खरी खोटी सुनाई, पर वैष्णवों की पहचान है बिल्कुल सहन कर लिए। तृणादपि सुनी चेना तरोरी बसहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यमराज जी की सहनशीलता देखो, ये जाकर कति संति ही सांस तारो, आज का मंत्री होता वो तुरंत कहता है सिपाही होकर के इतनी हिम्मत अभी सस्पेंड करता हूं। यमराज जी सहन कर गए, बिल्कुल सहन करते। तो इस अध्याय का तो महात्म्य बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैंने 4-5 पॉइंट आपको आपके साथ मैंने शेयर किया। अस्तु 3 प्रकार के कर्म किए जाते हैं, उनके फल मिलते हैं, सन्यासियों को नहीं मिलते, सबको मिलते हैं। तो यमदूत तो आपस में सोच रहे हैं कि भाई हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, संविधान देखो। तो एक ने संविधान देखा, फटाफट निकाला, क्या है भाई क्या संविधान निकाले? बोले भागवत के 5वां स्कंद निकालो, संविधान में लिखा हुआ है। वैसे अजामिल को तो हम लाए थे, बिल्कुल ठीक ठाक लाए थे। तो एक ने पढ़ा, हाँ भाई यस्तु यहवा एतद अहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलम स्वकुटुंबम एवं अनुदिनम प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तद अशुभेन रौरवे निपतति। बोले जो परिवार का मुखिया यहां ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरे हैं, इस प्रकार की भावना रख करके चोरी बदमाशी करके अपने परिवार का पोषण करता है, मरने के बाद उनको रौरव नरक में जाना पड़ता है।
एक ने कहा बिल्कुल तो सही हमने निर्णय लिया है, इनको तो हम नरक ले ही जा रहे थे। दूसरे ने कहा कि भाई हो सकता है कि एक ही गलती, एक गलती माफ किए कर दी जाएगी। दूसरा देखो, दूसरा देखा बोले संविधान में यही लिखा हुआ है भाई, जो अपने प्राण को बचाने के लिए पशु पक्षियों की हत्या कर देता है, मनुष्यों की हत्या कर देता है, उसको कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। बिल्कुल सही है, हम तो लेके जा रहे थे, संविधान सही कह रहा है, लेकिन हमारी गलती कहां हुई, कहां हमारी मिस्टेक हो गई, ये समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और चलो क्या भी हो गया, हमसे वो बलवान भी हुए, तो इनके भीतर क्रोध भी है, शंका भी है और गुस्सा भी। अब यमराज जी के प्रति जो भावना थी वो भावनाओं में भी कभी कमी आ गई, हर प्रकार से ये असंतुष्ट होकर के यमदूत चले हैं। और इनके मन में तीनों में आपस में वार्तालाप करते जा रहे हैं, सुनो सबसे पहले महाराज जी के पास जाएंगे, हम कहेंगे भाई ये तीनों कहां से आए थे, इनका पता बताओ, ये कहां रहते हैं और इनका मालिक कौन है, है ना, के यूयम कस्य यूयम, वो किसके थे और कौन थे। और दूसरी बात है हमको ही भेजो और उनको हम पीट पीट करके लेके आएंगे यहां तक। और तीसरी बात है जिस अजामिल को उन्होंने क्षमा कर दिए, अजामिल को बांध के लाएंगे। दो काम तो पहले करेंगे, फिर आपसे बाद में बात करेंगे। इस प्रकार की भावना लेकर के गए, तभी तो क्रोध हुआ, कति संति ही शास्तारो। इसका मतलब चक्रवर्ती पाद कहते हैं जो मालिक अपने आश्रित को आश्रय नहीं दे सकता है, ऐसे नालायक मालिक की सेवा करने की जरूरत क्या है। यहां तक कि उन्होंने लिखा है इसी जुगनु की सेवा करने से क्या फायदा है। यमराज जी को जुगनु कहते हैं भाव में कि ये जुगनु की सेवा करके हमारा लाभ क्या है, कि बेजी तो होना पड़ेगा, या तो आज बिल्कुल फाइनल हम कर लेंगे किसके पास जाए किसके पास ना जाए और हम मुंह काला आगे नहीं करेंगे। तब जाकर कहते हैं यदि स्यूर बहवो लोके शास्तारो दंडधारिण, हे प्रभु इस लोक में दंडधारिण शास्तारो बहवो यदि स्यात, यदि इस लोक में अनेक दंड देने वाले होंगे तो क्या होगा। बोले कस्य स्यातम नवा कस्य, बोले कोई कोई शासक एक मत देंगे और कोई कोई शासक विपरीत मत देंगे। जैसे मान लीजिए अजामिल का केस लेंगे, अजामिल ने जो नहीं करना चाहिए सारा काम कर लिया, है ना, अपने वृद्ध पिता माता का परित्याग किया, अपने विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया, अपने परिवार आर्य मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, चोरी की, व्यभिचार किया, लोगों को खूब लूटा पीटा, हत्या की, जितने सारे निंदनीय कर्म, गर्हित कर्म, वेद निंदनीय निषेध कर्म उन्होंने सारा कर डाला, है ना। तो इसी को मान लीजिए, इसी पर कोई विचारक कोई विचार दे देगा, कोई दूसरा विचारक विचार दूसरा दे देगा, हम क्या करेंगे। इसलिए ये जाकर कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं आज के समय में भी भाई राज्य स्तरीय जो न्यायालय होते हैं वहां पे कोई दूसरा विचार आता है, फिर व्यक्ति उसी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका दायर कर देता है, उसके लिए विचार अलग अलग आ जाता है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण के न्यायालय में विचार अलग अलग होते नहीं है। पर थोड़ी सी मिस्टेक यमराज जी की थी कि भाई उन्होंने उनको सिखाया नहीं था, और यह भी हो सकता है कि नहीं सिखाया तो अच्छा हुआ, क्योंकि अजामिल का प्रसंग हुआ, अजामिल के प्रसंग ना होता तो भागवत में ऐसे प्रसंग स्थान कहां मिलता। तो ये जो होता है भगवान की इच्छा से अच्छा ही होता है, भगवान जानबूझ करके अपने भक्तों से गलती करवाते हैं ताकि आगे चल के कहीं एक मौका मिले तो उस विषय का उस रहस्य का उद्घाटन हो पाए। सो मित्रों इस प्रसंग में यमदूत कहते हैं कस्य स्यातम नवा कस्य मृत्युश्च मृतमेव वा। मान लीजिए दो विरोधी शासक हो जाएंगे। अच्छा शासक माने क्या है, शासक माने नियंत्रण करने वाला, दंड देने वाला। दंड दो कारणों से दिया जाता है, एक तो जो अच्छे शासक होते हैं दंड देकर के सुधार करते हैं,
और दूसरे प्रकार के ईर्ष्यालु शासक होते हैं, वो दंड देते हैं अपने अहंकार को पोषण करने के लिए। ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग दंड देते हैं केवल अपने अहंकार को पोषण करने के लिए, लेकिन अच्छे शासक इस तरह से दंड विधान नहीं करते। अथवा शासक शब्द का एक अर्थ हो जाएगा शिक्षक, जो सिखाना चाहता है। तो यमराज जी कभी ऐसे शासक नहीं होंगे कि यमराज वो अजामिल ने ऐसी सारी गलती कर दी उसको खूब पिटो मारो, नहीं। जैसे सुधार हो जाए, जैसे इसी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, ऐसे उनको सुधार करके आगे बढ़ा देना। इसलिए यमदूतों ने भी बिल्कुल सही प्रश्न किया कि भाई विरोध कैसे उत्पन्न हो रहा है, आपने हमको भेजा और उन लोगों ने हमसे अजामिल को छुड़ा करके ले लिया, इस शंका का समाधान करो। तो मित्रों, यदि हम इस श्लोक का थोड़ा विचार करते हैं, श्लोकों पर, इस श्लोक पर, तो दो बातें आएंगी। यदि दोनों परस्पर सहमति युक्त विचारक मिल जाएं और इन्होंने भी कहा हाँ उसने मनुष्य को मारा और इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, दूसरे ने भी कहा सूली पर चढ़ा दिया जाए, तो दोनों का विचार बराबर हो गया, उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। और एक ने कहा सूली पर चढ़ा दो, एक ने कहा आजीवन कारावास कर दो, उसमें भेद हो गया। तो इसी को कहा गया मृत्यु और अमृत। अमृत माने सुख और मृत्यु माने दुख। तो यमदूत पूछ रहे हैं कि भाई विचारकों में अगर विचार अलग अलग हो जाए, किसको सुख भी दिया जाए और किसको दुख दिया जाए, अर्थात किसको नरक मिले किसको स्वर्ग मिले, विचार कैसा होना चाहिए। स्वाभाविक है कि ये मन में प्रश्न उठना चाहिए, आपके मन में भी उठना चाहिए, हमारे मन में भी उठना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न किया और क्या उत्तर मिलेगा, इसका उत्तर कल के प्रवाचक कल के श्लोक में देंगे। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, 9 बज चुके हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। यस, नेगेटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे हम क्रिएट करें अथवा भावनाओं कैसे बढ़ाएं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखो, परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल होगी प्रतिकूल होगी ये प्रकृति जाने, परिस्थिति जाने, लेकिन अपना मन तो अपने पास है ना, है कि नहीं। तो अपना मन को हम समझा सकते हैं कि भाई अगर परिस्थिति प्रतिकूल है, हम कैसे उस परिस्थिति से सीखेंगे, क्योंकि जब तक परिस्थिति प्रतिकूल नहीं होगा कोई नहीं सीख पाएगा। जिस इलेक्ट्रिक बल्ब को आप देख रहे हो, इसके लिए थॉमस एडिसन ने 10,000 बार प्रयोग किया। होंडा कंपनी, आप जानते हैं होंडा कंपनी, होंडा कंपनी मालिक ने सबसे पहले मोटरसाइकिल कैसे बनाया, आप उसको पढ़िएगा, सारे विरोधी तत्व उसके सामने आ गए, उनकी कंपनी दो दो बार दिवालिया हो गई, खत्म हो गई, लेकिन मनोबल वो बढ़ाता चला गया और निश्चय कर लिया कि आगे हमको काम करना है। तो अच्छे लोग वही होते हैं जो लोग प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल वातावरण को मन में धारण करते हैं और अपने निश्चय के अनुसार काम करते हैं, ये बिरले लोग होते हैं। इसलिए हमको चाहे कि ऐसे लोगों से मिले जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता की खोज करते हैं, नहीं तो नहीं होगा। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा करते हैं, नहीं तो मौका सबके लिए है, मौका सबके लिए। अगर प्रकृति हमारे लिए अनुकूल हो जाती तो हमारा बिल्कुल उत्कर्ष नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रतिकूलता आएगी तब हम बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति को आप बर्बाद करना चाहते हो, उसको सारी सुविधाएं दे दो। हमारे भक्तों में इतना आलस्य किस लिए है, इसका मुख्य कारण है रहने की खाने की कपड़े की कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूलता सारी बुराइयों की जननी है और प्रतिकूलता सारी अच्छाइयों की जननी है, आप देख सकते हैं। और कोई प्रश्न? यस।
इसीलिए तो एक विचार होना चाहिए, एक विचार होने के लिए अथॉरिटी अच्छा होना चाहिए। हमारे यहां प्रभुपाद ने तो यही कहा कि हमारे आजकल के जो न्यायालय हैं उसमें तरह तरह के लोग हैं, पापपूर्ण विचार वाले भी हैं, अच्छे विचार वाले, अच्छे लोग अच्छे विचार देते हैं, पापपूर्ण लोग पापपूर्ण विचार देते हैं, इसलिए यहाँ विचारों में भेद है। कई लोग कहते हैं कि वो उन्होंने हत्या कर दी, उनको फांसी पे चढ़ा दो, कई लोग कहते हैं क्यों चढ़ाओगे, है कि नहीं। पर भगवान के विचार में ऐसा नहीं है, एक विचार। अब यमराज जी जो विचार देंगे वो सर्वोच्च विचार माना जाएगा। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यमराज जी क्या करेंगे, अपने शिष्य जो दूत हैं उनको शिक्षा देकर के कहेंगे आज से वैष्णवों के पास मत जाना और उनको अपना बड़ा भाई अथवा गुरु समझना। आज के बाद ये अजामिल के बाद यमराज जी के दूत सब हमारे छोटे भाई है, कभी किसी वैष्णव को लेने आएंगे नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। हैं? अरे ये डिपार्टमेंट बात मत बोला करो, डिपार्टमेंट में तो कोई आप कल नहीं देखा था, कल किसने वो आश्रम में गोबर लिप दिया था, आज घर में गोबर उतार दो। कल किसने चार लोगों को बिठाने के लिए खट बनाया था, आज दूसरा करे खट को उखाड़ करके फेंक दो। तो ये तो ज्यादा अस्थिरता यहाँ है। ठीक है कि अगर एक ही विचार होता, हम लोग अगर हम भी होते, हम कहते गोबर भोबड़ छोड़ो, वही खटिया पे सो और प्लेन दीवार कर दो, क्या दिक्कत है भाई, सादा जीवन उच्च विचार। कोई कहता है गोबर लगा लो, कोई कहता है गोबर उखाड़ लो, है कि नहीं। ये ठीक नहीं है, एक ही विचार होना चाहिए और वो परिपक्व दिमाग जो है ये बात विचार दे सकता है, नहीं तो कमजोर दिमाग ऐसे ही करेगा, है कि नहीं। नहीं तो लोग वर्षों वर्षों तो एक ही काम में रहते हैं, हाँ, तो ये ठीक नहीं। इसको कच्चापन कहते हैं, कच्चापन है, पक्कापन अच्छा होता है। इसलिए मैं तो कहा ना कि संवाद सुनना चाहिए, बड़े लोगों से संवाद सुनना चाहिए, पक्के लोगों से मिलना चाहिए, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अतः दुत्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान कौन है, जो व्यक्ति कमजोर संग का परित्याग करके उत्तम लोगों की संगति करेगा, अच्छे लोगों का संग करेगा, यही तो बुद्धिमत्ता है। और बुद्धिमत्ता क्या, आप लोगों में से कोई प्रश्न है, माताओं में से कोई प्रश्न नहीं, तुम्हारी कुछ समझ कहाँ है कोई पता नहीं, वो भी अच्छा है। दुनिया में दो लोग सुखी है, एक बिल्कुल जो नहीं समझता और दूसरा जो बिल्कुल समझदार है। अजामिल कहाँ का था, हाँ जी, कनौज किधर पड़ता है, हिमाचल में ना गुजरात में, है उत्तर प्रदेश में। ये अजामिल का क्या अर्थ है, अजामिल माने, हाँ जी क्या करता, अजामिल माने, अजामिल माने जो पुरानी माता जी यहां जो बैठी हो एक महीना से काल क्लास सुन रही, वही बताए, नए जो जो आए नहीं। अजामिल माने क्या है, अजामिल इनका यही विचार है, न रहेगा बांस न बजेगी बांस। आप कितना भी बोलो हम तो माला पूरे पिरोंगे उसमें। अरे भाई सही है माला बनाना, लेकिन उद्धव मनना भयो दस बीस। अरे भाई उद्धव ये मन दस बीस तो है ना, एक टाइम में ये एक काम कर सकता है, दो चार काम नहीं कर सकता। देखो अजामिल कितने बार हम बता चुके हैं, जो भी यहां आता है अजामिल अजामिल तो दस दस पचास बार तो कही देता है। तो अजामिल का क्या अर्थ है, इनको तो पूछेंगे बता ही देंगे, तुम बोलो अब देखो तुम्हारे सामने यहां पूछ लेंगे, कोई ना कोई उत्तर दे देगा। अजामिल माने हाँ, अजा माने कैसे पाप हो जाएगा? अजामिल माने दीजरा जी बताओ, अजामिल माने बहुत क्लास देता है ये। हाँ हाँ हाँ, एक ही अर्थ है। देखो बता दिए ना, जो अजा माने माया, और माया में जो घुलमिल रहता है उसका नाम अजामिल। दूसरा भगवान, बीच में आ रह गया, आ का क्या क्या मतलब है भाई? अज, आपने कहा अज माने भगवान, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपको। और मिल माने मिलना, लेकिन अज आ मिल, आ माने है कि नहीं? अज धन आ धन मिल, अजा मिल, आ माने आ समानता, तो अलग नहीं हो जाएगा। अ माने अलग हो जाएगा, किसने कहा अलग हो जाएगा? वाह, क्या अजामिल अलग हो गए? अरे महाभक्त तो अजामिल वैकुंठ चले गए। इसका मतलब मन तन और वचन से जो भगवान में मिल गया उनका नाम है अजामिल। आ माने पूरी तरह से समानता, जो तो बिल्कुल भगवान में मिला हुआ है, भगवान के धाम में रह रहे हैं और सब कुछ भगवान के लिए समर्पित है, उनका नाम है भक्त। देखा तुम्हारी नाक कटी ना, कटी नाक, इसीलिए कुछ ध्यान से सुनाया करो, अपने अपनी जाति की बदनामी मत करो, है नहीं? अब देखो इनको, इन्होंने कोई ना कोई तो बता दिया भाई, एक पेड़ है, एक पेड़ में भले ही एक एक फल हो, एक फल हो, उसको निष्फल तो नहीं माना जाएगा ना, उसको माना जाएगा, चलो पेड़ में एक फल है, लेकिन तुम्हारा पेड़ यही एक भी फल नहीं है, एक फल कम से कम एक, एक माता जी उत्तर दे देती थी। चलो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रयास करो आगे बढ़ जाओगे। जय श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।